गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी जैया गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन ऊपर आकर के बैठो ऊपर यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वन चारी यमुना तीरा वन चारी जैया राधा माधव कुंज बिहारी जया राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी जैया गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वन चारी यमुना तीरा वन चारी जैया राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare,
Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare,
Hare
Gaur Hari Gaur Hari Gaur Hari Gaur Hari Gaur Jaya Jaya Prabhupada 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोतर सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम के श्री श्री कृष्ण बलराम के श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताई गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एम गौरांग की। तो आप लोग एकदम अपने को मान रहे कि अंतिम कैंडिडेट हैं, रास्ते पर मत बैठिए, इधर जा आकर के बैठिए, एकदम पूरा विश्वास हो जाए कि अब हमारे पीछे कोई नहीं आने वाला है तब सोच सकते हैं। रास्ता छोड़ दीजिए, इधर बैठिए। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंध दीन बंध जगतपत गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयताम सुरतार पंगर मम मंद मतर्गति मत सर्वस्व पदां भोज राधा मदन मोहन। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जैन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जिनको जगह नहीं मिला है इधर आ जाने, पीछे से भी आ सकते हैं, दरवाजा खुल गया। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 15वें अध्याय का 12 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम स्कंध 7 अध्याय 15 श्लोक 12। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म परधर्म च आभास उपमा छल अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत्। विधर्म परधर्मस्य आभास उपमा छल अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत्। विधर्म परधर्मस्य आभास उपमा छल अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत्। विधर्म परधर्मस्य भास उपमा छल अधर्म शाखा पंचे धर्मज्ञ धर्मवत्यजे विधर्म परधर्मस्य आभास उपमा छल अधर्म शाखा पंचे धर्मज्ञो धर्मवत्यजे फिर से पढ़िए, अब तो सत्यानाश कर दिया श्लोक का। फिर से पढ़िए देख करके, उनको पढ़ने दीजिए, आप फिर से एक बार पढ़िए। विधर्म परधर्म अन्यों द्वारा अभ्यास किए जाने वाला धर्म च तथा आभास दिखावटी धर्म उपमा सिद्धांत जो धार्मिक लगते हैं किंतु होते नहीं छल उगने वाला धर्म अधर्म शाखा जो अधर्म के विभिन्न शाखाएं हैं पांच इमा ये धर्मज्ञ धर्म को जानने वाला अधर्म वत् उन्हें अधार्मिक के रूप में स्वीकार करते हुए त्यजेत त्याग दे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, अधर्म की पांच शाखाएं हैं, जो विधर्म ऐसा धर्म जिसके लिए मनुष्य पात्र नहीं है, परधर्म दिखावटी धर्म आभास, सिद्धांत जो धार्मिक लगते हैं लेकिन होते नहीं उपधर्म, तथा ठगने वाला धर्म छल धर्म के नाम से उचित रूप में जाने जाते हैं, जो वास्तविक धार्मिक जीवन से अवगत हों और उसे इन पांचों को अधर्म मानकर इसका परित्याग कर देना चाहिए। तात्पर्य, कोई भी धर्म जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के विपरीत हो उस विधर्म या उसे विधर्म या छल धर्म माना जाना चाहिए, जो वास्तव में धर्म रुचि रखता हो उसे इनका परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करना चाहिए और उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा करने हेतु निसंदेह उत्तम बुद्धि की आवश्यकता होती है, जो अनेक जन्मों के पश्चात भक्तों की सत्संगति करने तथा कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने के पश्चात ही जागृत हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा संस्तु धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज के अतिरिक्त प्रत्येक धर्म को अधर्म समझकर त्याग देना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जब आप लोग पीछे आए और जो पहले से बैठे हैं उनको असुविधा प्रदान करेंगे तो आप लोगों पर पाप लगेगा ना। आप लोग पीछे आए हैं तो थोड़ा सा और इधर दब जाइए, ये जो पहले से बैठे हैं उनको ना कठिनाई हो। उनका प्रथम स्थान है ना, आप लोग पीछे आए हैं थोड़ा सा और ठीक है। गृहस्थ धर्म का वर्णन चल रहा था, कई एक तथ्य पर विचार किया गया। एक अध्याय में गृहस्थ को क्या करना चाहिए इसको अच्छा से बतलाया गया। भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, देश और काल का लाभ लेना चाहिए, उत्तम देश का सेवन करना चाहिए क्योंकि उत्तम देश में किया हुआ अनुष्ठान का फल अक्षय होता है। उत्तम काल का लाभ लेना चाहिए क्योंकि उत्तम काल में किया हुआ अनुष्ठान नश्वर होता है। उत्तम काल कौन है इसको बतलाया गया, उत्तम देश कौन है इसको बतलाया गया। अब कुछ निषेध के विषय में चर्चा कर रहे हैं, खास करके बहुत जोर दे करके कहा गया कि श्राद्ध में विस्तार नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कहा गया कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए, श्राद्ध में विस्तार नहीं करना चाहिए। और इस विषय पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि विस्तार करने से क्या दोष होता है, बहुत अच्छा से कई एक श्लोक उद्धृत करके इस पर चर्चा की जा चुकी है। कहने अब एक बात और कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में न दद्यात आमिषम श्राद्ध न चाद्यात धर्म तत्वविद। जो धर्म के सिद्धांत को जानते हैं तो श्राद्ध में मांस नहीं देना चाहिए, मांस मछली श्राद्ध में न अर्पित करना चाहिए न खाना चाहिए। मुन्यन्य स्यात् पराकृत यथा न पशु हिंसया। जैसे पितरों की तृप्ति शाकाहारी पदार्थ से होती है वैसे मानसिक नहीं होती। वे कह रहे हैं कि मनुष्य का निर्णाम परो धर्म न्यासो दंडस्य भूतेषु, सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। अहिंसा का ध्यान रखते हुए, अब इधर नहीं जगह है पीछे से मत भेजिए, वहीं पर्दा खोल दीजिए खिड़की के, यहां खड़ा होकर के सुने। तो अहिंसा मुख्य धर्म है, इसको सेंटर में रखना चाहिए। और अहिंसा का विस्तार है कि मनोवाक काय काय जस्य यह। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मन से भी उत्पन्न न हो हिंसा, और हमारे वाक्य से भी नहीं, और शरीर से भी नहीं। किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, यह ध्यान रखना चाहिए। न अपने मन से ऐसा कुछ संकल्प करना चाहिए कि जिससे किसी को कष्ट हो जाए, कोई कठिनाई में पड़ जाए, और न वचन से ऐसा करना चाहिए न शरीर से। और यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखिए अहिंसा का इतना महत्व है, ये इतना बड़ा धर्म है कि इसके लिए यहां तक वेद का विरोध कर दिया गया। हिंसा को रोकने के लिए ही वेद का विरोध किया गया। और अहिंसा बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, सब अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हमारे तरह हमारे चलते किसी को कष्ट न हो। और इसी से जो ज्ञानी पुरुष है तो कर्ममय यज्ञ का या वो उस त्याग कर देते हैं। तो वे द्रव्यमय यज्ञ का त्याग कर देते हैं। आप गीता में कई एक यज्ञ की बात सुनते हैं, और उसमें भगवान एक हायरार्की भी स्थापित किए, द्रव्यमय यज्ञ, जहां आहुति दी जाती, वस्तु की आहुति दी जाती। तो कितने मनस्वी हैं जो स्वरूप से ही द्रव्यमय यज्ञ का त्याग कर देते हैं। लेकिन द्रव्यमय यज्ञ करेंगे तो हिंसा की संभावना है। कहीं कहीं लिखा गया है कि जो वहीं कोई यज्ञ का अनुष्ठान करता है तो अस्थावर प्राणी और जंगम प्राणी सब कांपने लगते हैं, सबको भय हो जाता है कि कहीं हमको ही ना बलि बना दिया जाए। करें कि अस्थावर प्राणी भी, अस्थावर प्राणी मतलब वृक्ष, और वृक्ष भी कांपने लगते हैं। यज्ञ कर रहे हैं तो अब तो फूटा गाड़ने के लिए, अब हमको तो काटेंगे, हमारी शाखा पर आघात करेंगे। वृक्ष भी संवेदनशील हैं। तो द्रव्य मय यज्ञ के अनुष्ठान से भयभीत हो जाते हैं। और इसी से कुछ मनस्वी हैं कि वे द्रव्यमय यज्ञ का त्याग कर देते हैं। द्रव्य यज्ञ यक्षमाणा दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति, भयभीत हो जाते हैं। और इसी से तस्मा दैवोपपन्नेन मुन्यन्येन अपि धर्मविद् संतुष्टो अह अह कुरियान नित्य नैमित्तिकी क्रिया। जो धर्म के सिद्धांत को जानते हैं धर्मविद, वे अपने धर्म का अनुष्ठान करते हैं, नित्य अनुष्ठान करते हैं, अपने नित्य नैमित्तिक क्रिया का पालन करते हैं, लेकिन दैवोपपन्न्य न मुन्यन्य न, जब संयोग से प्रारब्ध से प्राप्त हो जाता है, और मुन्यन्य न जो मुनि के अनुरूप है, जिसमें किसी प्रकार के हिंसा नहीं है, और इसी उसी को स्वीकार करके अपने नित्य नैमित्तिक कर्म का निर्वाह करते हैं। यह सिद्धांत है। कोई कोई प्रश्न कर सकता है, यज्ञ का त्याग कर देते हैं, ये तो धर्म है। वेद में तो अधिकांश हिस्सा इसी के स्थापना में लगा है, तो कह रहे हैं कि विधर्म पर धर्मश्च आभास उपमा छल अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत। कह रहे हैं कि धर्मज्ञ जो धर्म के सिद्धांत को जानते हैं, वो अधर्म शाखा पंचेमा, ये पांच नाम का गिनती कर रहे हैं। वे नाम है विधर्म पर धर्म आभास उपमा और छल, यानी कि अधर्म शाखा, ये भी अधर्म के ही शाखा है। वो अधर्म के शाखा है, अधर्म वृक्ष है तो उसी के डाली है, तो धर्म के सिद्धांत को जानता है और उसको अधर्म के समान ही त्याग दे। जैसे अधर्म का त्याग करता है, और ये जो देखने में धर्म लगते हैं लेकिन वास्तव में अधर्म के ही शाखा है, और इनका त्याग कर देना चाहिए। यह इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। अब इस श्लोक में पांच शब्द आ रहा है, विधर्म परधर्म आभास उपमा छल, इनको त्याग करना होता है। और उस समय के लोग तो इन शब्दों को समझते थे, या जो नहीं भी समझते हैं तो आगे के श्लोक में इसको समझाया गया है। लेकिन पांच चीज त्यागने की बात है तो कुछ समझेंगे तब ना कि विधर्म क्या होता है। विधर्म का अर्थ है जो धर्म को बाधित करे, धर्म में बाधा डाले। देखने में धर्म ही लगता है लेकिन अपने मूल धर्म में बाधा डाल रहा तो उसको विधर्म कहेंगे, वो विपरीत धर्म हो गया और उसका त्याग करना है। एक उदाहरण से इस बात को समझिए। हम भगवान का ध्यान करते, स्मरण करते, जप करते, स्नान करके जप करते हैं कि बिना स्नान किए? स्नान करके। तो स्नान करना धर्म है कि अधर्म? धर्म है, धर्म है ना। लेकिन अब शरीर बहुत अस्वस्थ है, किसी बीमारी से बहुत दुख भोग रहे हैं, बहुत कठिनाई है, और अब पड़े पड़े ही भगवान का स्मरण कर रहे हैं या नाम धीरे धीरे बोल रहे हैं। अब कोई जबरदस्ती उस अवस्था में भी अब स्नान करे, और स्नान करने का परिणाम हो गया कि और खांसी बढ़ गई, अब खाए खाए करने लगा और भी कांपने लगा, तो अब उस अवस्था में वो स्नान कर रहा है तो उसको पाप मिलेगा कि पुण्य मिलेगा? पाप लगेगा ना। तो स्नान तो धर्म है लेकिन हमारा जो मूल धर्म है उसमें बाधा डाल रहा है, तो इसलिए उसको विधर्म कहा गया। अशक्ते न शरीरेण स्नानम कुर्वन्ति ये बलात्। अब शरीर में शक्ति नहीं है, अब जबरदस्ती स्नान कर रहे हैं, किस लिए? शुद्ध है कि स्नान करने से हमारी शुद्धि होगी? धर्म है, बिना स्नान किए अब कैसे जप करेंगे? और स्नान किए तो और कठिनाई बढ़ गई। तो कह रहे हैं कि आत्महत्या कृतस तैस्तु तया तेन नरखाई है। अब उस अवस्था में जो स्नान कर रहा है कि आत्महत्या कर रहा है और उसको नरक मिलेगा। अपर्ध पर नहीं, विधर्म का अर्थ है कि जो अपने वास्तविक धर्म में बाधा डाले उसको विधर्म कहेंगे और उसका त्याग करना होता है। पर धर्म एक बात कह रहे हैं कि पर धर्म दूसरे का धर्म है, धर्म ही लेकिन दूसरे के लिए और उसका भी त्याग कर देना चाहिए। भगवान गीता में श्लोक बोले हैं ना, स्वधर्मे निधनो श्रेय पर धर्म भयाव। उपदेश दिया गया है दूसरे व्यक्ति के लिए और उसको हम अंगीकार करने लगे, दूसरा व्यक्ति अंगीकार करने लगे तो पर धर्म हुआ। परम धर्म नहीं, पर धर्म। दूसरे के धर्म को स्वीकार करना, इसको पर धर्म कहते। भगवान इसको पसंद नहीं किए। अर्जुन गए थे युद्ध करने के लिए और कहने लगे कि हम भिक्षा मांग करके जिएंगे, अपना धर्म अवे छोड़ करके दूसरे का धर्म अंगीकार करने लगे, यह ठीक नहीं। अपने धर्म को स्वीकार करना चाहिए। और एक को कह रहे हैं कि आभास, आभास का अर्थ है कि धर्म जैसा दिखता है लेकिन वास्तव में वो धर्म होता नहीं है, तो धर्म जैसा दिखता है। जैसे कोई कोई व्यक्ति है कि मनमाना अपने हिसाब से कुछ कपड़ा पहन लेता है, हाय गृहस्थ, और अब कहीं गया तो बड़ा झोल पहन लेता है या बोड़े का पहन लेता है, उसको आभास कहते हैं। वो धर्म नहीं है, वो धर्म जैसा कुछ दिखता है। बहुत सारे लोग हैं कि उनका आश्रम के हिसाब से दूसरी स्थिति है और वस्त्र अपने हिसाब से कुछ दूसरा पहनने लगते हैं, तो उसको आभास कहते हैं। वो धर्म जैसा दिखता है, धर्म होता नहीं। और इसी से भागवत धर्म में का जहाँ वर्णन है माया को कैसे पार करेंगे, और प्रबुद्ध जी बतला रहे हैं कि जगत के परिणाम को, जगत के व्यवहार को देख करके उसे निराश हो करके गुरु का आश्रय लेना चाहिए और गुरु के आश्रय में भागवत धर्म के शिक्षा लेनी चाहिए। भागवत धर्म के क्या क्या शिक्षा तो अनेक है, उसमें कुछ का नाम गिना रहे हैं। असंग मनस सर्वत, सर्वत मनसो संगो, सब जगह से आसक्ति को हटाना, भगवान के कथा कीर्तन का शिक्षण, और विविक्त चीर वसन, वस्त्र का भी सिलेक्शन करना होता है, कैसा वस्त्र पहनना है, और इसके भी शिक्षा होनी चाहिए। जो आश्रम के अनुसार निर्धारित वस्त्र है और उसी को धारण करना चाहिए। मनमाना कोई वस्त्र अपने से धारण कर लिए कि हम साधु जैसा दिखें, ये साधु का वस्त्र है, और उसको आभास कहा जाता है और उसका त्याग करना होता है, उसको मान्यता नहीं दी गई। और उपमा, उपमा जो धर्म जैसा है दिखता है, धर्म है नहीं। पुत्र को उपमा, देवकी जी कंस को समझाने के लिए कह रही तो आपके पुत्री के समान है, आपकी पुत्री है, पुत्री और पुत्री जैसी है। तो जो धर्म जैसा दिखे उसको उपमा कहा गया, उपमा धर्मोपमा, धर्म जैसा। पर इसके दो भेद किए गए, एक पाखंड और दूसरा दंभ। पाखंड और दंभ इसको उपमा लिया गया। थोड़ा थोड़ा भेद है, पाखंड और दंभ प्राय एक अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन भेद करने पर भेद भी है जो वेद के विरुद्ध है। वेद जिसकी मान्यता नहीं देता है और उसका आचरण करना उसको पाखंड कहा जाता है। जैसे रक्त वस्त्र पहनना, इंद्र घोड़ा चुराए थे, अपने को छिपाने के लिए लाल कपड़ा पहन लिए, और अड़हुल के फूल जैसा लाल रंग का कपड़ा पहन लिए। तो ये वेद मान्य नहीं है, वेद बाह्य है, पर इसको पाखंड कहा गया। पाखंड वो पाप का ही टुकड़ा है, लेकिन अब समाज में तो लगता है कि तो धर्म है, साधु है। लाल कपड़ा पहना है तो साधु होगा, फकीर होगा। तो उपमा में दो चीज ग्रहण किए हैं, जो वेद बाह्य है या दंभ। दंभ का अर्थ होता है दूसरे को ठगने के लिए दिखाना, जो आप हैं नहीं लेकिन दूसरे को ठगने के लिए कुछ है, अपने को भिन्न रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो उसको दंभ कहा जाता है। सावन के महीना में शिव जी की पूजा करते हैं लोग। अब शिव जी का जो वाहन है नंदीश्वर, तो उसकी भी पूजा करते हैं, उसके प्रति सम्मान है। तो कभी कभी देखा जाता है कि जो हिंदू नहीं है, दूसरे धर्म के हैं, तो वे भी नंदीश्वर को लेकर के, बैल या सांड को लेकर के समाज में घूमने लगते हैं। तो इसको दंभ कहा जाएगा। प्राय पाखंड और दंभ एक ही अर्थ में होता है, लेकिन अंतर करना चाहे तो जो वेद के बाह्य है तो वह पाखंड है, और दूसरे को ठगने के लिए कर रहे हैं तो उसको दंभ कहा जाएगा। दोनों को ग्रहण किया गया उपमा में। और एक है छल, छल शास्त्र के जो शब्द हैं उसको ठीक ठीक न प्रस्तुत करना, उसको दूसरे रूप में ग्रहण कर लेना, इसको छल कहते हैं। एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। जैसे शास्त्र में लिखा गया कि गाय का दान करना चाहिए, गोदान बहुत महत्वपूर्ण है, धर्म है, गोदान ठीक। अब गोदान लिखा है और कोई एकदम बुढ़ी गाय जो मरने वाली है, अब उसको दान दे दे, गो है भी गाय ही है ना, तो इसको कहा जाएगा छल, इसका त्याग करना चाहिए। शब्द के आशय को समझ करके उसके अनुरूप आचरण करना यह तो धर्म है, लेकिन अब उस शब्द का दुरुपयोग करना, उसको डिस्टॉर्ट करके, उसको विकृत करके ग्रहण करना, और इसको छल कहते हैं। गाय दान करना है तो अच्छा गाय दान करना है, यानी कि गो दान करना है, 21 रुपये के गाय खरीद करके दान दे देते। बनारस गंगा जी के घाट पर और गाय फाड़ी रहते हैं, पेट भी नहीं भरा, थर 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 कांप रही है, और कोई एक ग्राहक जाते हैं कोई 100 रुपया उसे गाय को खरीदता है, उसी को दान देता है। यह तो केवल छल है, गोदान केवल शब्द का निर्वाह होता है, उसके अर्थ का निर्वाह नहीं होता है। अरे गाय दान करना है तो स्वस्थ गाय दान करना चाहिए, दुधारू करना चाहिए। आप लोग नृग महाराज की कथा सुनते हैं, तो नृग महाराज तो गिरगिट के रूप में थे, अब भगवान के हाथ का स्पर्श मिला तो उनका शरीर बहुत तेजस्वी हो गया, देवता के समान दिखने लगे। तो भगवान तो प्रश्न करते कि आप कौन है, ये क्या हो गया। और नृग महाराज कहने लगे कि अरे आप तो सब जानते हैं, हमको कुछ बतलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं तो मैं बतला रहा हूँ कि आप यदि दानियों का नाम सुने होंगे, उसका कभी आख्यान चला होगा, तो दानिसु आख्याय माने सो हमारा नाम आपके कान में जरूर पड़ा होगा, क्योंकि मैं बहुत गाय दान दिया। और कितना गाय दान दिया है कि उतना ही जितना पृथ्वी के धूली कण है, ये आकाश में जितने नक्षत्र हैं, और एक और कुछ याद नहीं आ रहा, ये उदाहरण दिए, जितने धूली कण हैं आए, जितने ये आकाश से वर्षा के बिंदु गिरती हैं, और उतना दिया हूँ, इतना गाय दान दिए हैं, लेकिन अब एक भी बुढ़ी गाय नहीं दिए हैं। कैसे गाय दान दिए हैं? पयस्विनी, दुधारू गाय, तरुणी, एकदम जो एक दो बच्चा अभी दी है, करिया है गाय, और सील रूप गुणोपन्ना, सील से युक्त, रूप से युक्त और गुण से युक्त, कपिला, कपिला गाय हेम श्रृंगी, उसके सिंग पर सोना मढ़ा गया, न्याय अर्जिता, और या तो धन अपने पैसे से खरीदे हैं या अपने घर पर उसका जन्म हुआ है। रुप्य खूरा, और खूर में चांदी का आवरण किया गया है, और सवत्सा बच्चे के साथ, और दुकूल माँ भरणा, और गाय पर कपड़ा बांध देते हैं, कुछ माला पहना देते हैं, कभी कभी कुछ आभरण डाल देते हैं, ददऊ अहम, ऐसा में गान दिया। तो गाय दान के विषय में यही आदर्श है, पयस्विनी दुधारू गाय देना चाहिए, जिसके पास दूध है वो जिसके पास दूध नहीं है वैसे गाय को दान नहीं देना चाहिए। उस समय बहुत लोग दान का लाभ लेना चाहते, गोदान करना है, अब जो बहिला है जो गाभी नहीं उसी को दान दे देते हैं ना। पयस्विनी जो दुधारू गाय है उसका दान करना चाहिए, और तरुणी जो अभी जवान है, और इससे ध्वनित है कि बिना दूध वाली गाय का दान नहीं करना चाहिए, जो बुढ़ी गाय है उसका दान नहीं करना चाहिए। सील रूप गाय कोई कोई होती है कि बहुत लात मारती है, उसको लोग दान देते, ये नियम नहीं है, गाय सीधी होनी चाहिए और रूप देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए। मतलब अब इसका सिंग टूटा हुआ है या पूंछ कटा हुआ है, ऐसे गाय को दान नहीं दिए, एक भी दान नहीं दिए। और गुणोपन्ना, और तरह से उसमें गुण होना चाहिए। और कपिला ये कह रहे हैं कि कपिला गाय, हाँ भाई ये कपिला, ये जो पीछे गुण बतलाया गया उस गुण से जो युक्त है, मतलब दुधारू है और जवान है, सीधी साधी है, रूप ठीक है, और उसको कपिला कहा जाएगा। या कपिला रंग का है, 10 प्रकार के जो लक्षण दिखते हैं उसको कपिला कहा जाता है। जो धवल वर्ण की है उसको कपिला कहा जाएगा, जो पीली वर्ण की है उसको कपिला कहा जाएगा, जिसके आँख लाल लाल हैं उसको कपिला कहा जाता है, या जिसके पूँछ पियरी पूँछ वाली बोलते रहते हैं संगीत माधव, पियरी पूँछ वाली हम तो बहुत बार सुने हैं लेकिन अभी पढ़ रहा था तब समझ में आया कि एक अच्छा लक्षण है। तो शास्त्र में 10 लक्षण दिया गया है, उसमें से कोई लक्षण है तो उसको कपिला कहा जाता है। तो दान देने का यह विधान है, गाय दान देते हैं तो गाय पर भी कुछ वस्त्र डाल देते हैं, माला पहना देते हैं, सिंह है पर कुछ सोना मढ़वा देते हैं, और वो नहीं हुआ तो कम से कम तेल घी तो जरूर ही लगा देते हैं, इतना तो जरूर करते हैं, और वो पैर में भी चांदी का नाल ठुकवा देते हैं। और नृग महाराज कह रहे हैं कि सबको मैं ऐसे दान दिया, कितना दान दिए थे, जितना पृथ्वी की धूली कण, जितना वर्षा का कण है, जितने आकाश में नक्षत्र है, और सब ऐसे छांट छांट करके पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकुला भरण। तो गाय देने का यह विधान, यह आदर्श है। लेकिन अब गोदान इस शब्द को लेकर के और कोई वृद्ध गाय देने लगे तो इसको छल कहा जाए। तो कह रहे हैं कि धर्मज्ञ जो धर्म के सिद्धांत को जानते हैं, तो ये जो अधर्म शाखा, अधर्म के 5 शाखा हैं, और उसको अधर्म वत त्यजित, उसको अधर्म जैसा ही त्याग देना चाहिए। लेकिन अभी झगड़ा बाकी रह गया, अभी पर धर्म नहीं विधर्म, जो धर्म पर बाधा डाल रहा है वह हुआ विधर्म। तो अब ये तो श्रृंखला चलेगा, इसी से भगवान कह दिए सर्वधर्मान परित्यज्य। मूल धर्म है भगवान की भक्ति, अब भक्ति में जो बाधा डाल रहा है तो वह हुआ विधर्म, उसका त्याग किया जा सकता है, यह सिद्धांत है। तो खास करके यह अनुष्ठान के विषय में कहा जा रहा है कि ऐसा कर्म कांड नहीं करना चाहिए जिससे किसी की हिंसा, वो भले ही यज्ञ रूप है धर्म रूप है लेकिन उसको अधर्म जैसा ही त्याग देना चाहिए, यह इस श्लोक का संदेश है। हरे कृष्ण। प्रश्न नहीं है ना? प्रश्न और प्रसाद में जो चुनना हो चुन सकते हैं। गुड़ाकेश जी कुछ कहना चाहते हैं? कुछ सुधार करेंगे? हाँ दीजिए, माइक में बोलिए, दूसरे लोग भी सुने।
लेकिन जैसे हम लोग इस छल इत्यादि धर्मों का लगभग त्याग करके मूल धर्म का आचरण करते हैं, जिससे भक्ति धर्म का आचरण हो रहा है, वो जितनी मात्रा में हो रहा है उतनी मात्रा में अपनी क्षमता में अनुसार शुरू करते हैं। इस धर्म का जो आचरण हो रहा है वो धर्म का आचरण लोग करते हैं, लेकिन अगर उस धर्म में भी कुछ छल हो सकता है क्या?
के छल करने वाले तो कहीं छल कर लेते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वो एकम पर ध्यान नहीं देंगे, अब कंजूस है तो सर्वधर्मान संत्यज्य, आलस्य है, कृपणता है, तो छोड़ने में तो अब नंबर एक पर रहेंगे, लेकिन माम एकम शरणम व्रज, अब इसको नहीं ग्रहण करेंगे। सर्वधर्म का त्याग तो मुख्य चीज नहीं है, मुख्य चीज है एकम शरणम व्रज, हमारी शरणागति स्वीकार कर। लेकिन सब प्रकार का भोग भोगते रहेंगे, अपने रेस्टोरेंट में जा करके खाएंगे, पत्नी बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं, हम तो जप करते हैं, हरे कृष्ण जपते हैं, हमारे लिए श्राद्ध तो कोई जरूरत नहीं है ना, ये श्राद्ध करना तो फालतू चीज है ना, हम क्यों श्राद्ध करें? ठीक है भाई, तुम कृपण नंबर एक है मत करो, या महाराज युधिष्ठिर से ऊपर स्थान चला गया मत करो। विधर्म का अर्थ है कि धर्म में जो बाधा डाल रहा है। और श्रीपाद जीव गोस्वामी जो प्रसिद्ध श्लोक है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृत, जहां तक अन्य अभिलाषा की बात है जीरो, लेकिन ज्ञान और कर्म जीरो नहीं। यह लिमिट है कि मूल धर्म बाधित नहीं होना चाहिए, आवृत नहीं होना चाहिए, और स्पष्ट खोल करके लिख दिए कि जो समाज के लिए बहुत आवश्यक कार्य है और उसको भक्त लोग भी करते हैं तो उत्तमा भक्ति की क्षति नहीं है, जैसे श्राद्ध उदाहरण में श्राद्ध। लेकिन अब और कुछ छोड़े या न छोड़े, श्राद्ध छोड़ने में बहुत रुचि है, तो यह कार्पण्य का, कृपणता का या आलस्य का लक्षण है, अनन्या भक्ति का लक्षण नहीं है। तो शास्त्र के शब्द को ठीक ठीक न ग्रहण करना, दूसरे रूप में ग्रहण कर लेना, तो या केवल शब्द को ग्रहण करना, उसके मैसेज को न ग्रहण करना, यह छल है। तो ये छल तो कहीं लग जाएगा ना, शास्त्र के वचन में अवकाश है। हम कई एक जगह ऐसा अनुभव कर रहे हैं, वो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, नायम ऋणी न किं करो, न वो देवता का ऋणी है, न पितर का ऋणी है, न भूत का ऋणी है, कौन? सर्वात्मनाय, जो पूरा पूरा सब प्रकार से कृष्ण के शरणागति स्वीकार कर लिया। तो ये सब बात पर ध्यान न देना, तो यहाँ छल का अवकाश तो है, कई एक जगह अवकाश है। हाँ बोलिए।
आता है कि जो किसी का गया में जाकर के कुंभ भरवा दिया जाता,
क्या कहा?
गया जी।
हाँ,
तो गया जी में जब किसी का पिंड भरवाने हम जाते हैं,
हाँ,
तो वहाँ कहा जाता है कि अब आपको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।
हाँ,
तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश करिए, श्राद्ध करते रहना चाहिए या गया जी में जिसका पिंड भरवा दिया जाता है तो वहाँ क्या क्रम को आगे का उसको करना चाहिए?
देखिए, ये प्रश्न दो महीना में लगभग दर्जनों बार हमारे पास आ गया। मैं एक यात्रा में गया था, गया जी गया था, तो बस में ही प्रश्न आने लगा। हम तो इस पर कोई विशेष अध्ययन नहीं किए, डायरेक्ट अध्ययन नहीं किए हैं, लेकिन श्राद्ध एक आवश्यक कृत्य है और श्राद्ध का वो विधान है, प्रत्येक वर्ष करते हैं, वार्षिक श्राद्ध करते हैं, पितृपक्ष अभी आने वाला है तो उसमें करते हैं। लेकिन गया जी में जब श्राद्ध कर लिए तो अब ये इसेंशियल नहीं है, इतना ही है कि अब आपको आवश्यकता नहीं है कि श्राद्ध कीजिए। ऐसा नहीं है कि फिर से कुछ करेंगे तो उस पर कुछ दोष लग जाएगा, यह विधान नहीं। श्राद्ध अति आवश्यक कृत्य है, लेकिन गया जी में कर लिए तो अब आपका जिम्मेवारी पूरा हो गया। अब प्रत्येक साल पितृपक्ष में कुछ करें यह आवश्यक नहीं है, इतना ही आशय है। आप कर रहे हैं उसी तिथि पर कीर्तन कर रहे हैं, वैष्णवों को भोजन करा रहे हैं, तो उसमें क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। ऐसा निषेध नहीं किया गया कि आप कर नहीं सकते, यह कहा गया है कि गया जी में कर लिए तो आपके लिए आवश्यक नहीं। हमारा यह समझदारी है और इस्कान का जो सेंटर है वहाँ वो क्या जगदीश श्याम करके उनको बहुत केस आता रहता है, तो उनसे भी मैं पूछा, वो भी यही बात कह रहे थे। माइक ले दी।
हरे कृष्ण महाराज, मेरे गुरु भाई थे विष्णु गोपाल दास के शिष्य, तो उनके पिताजी का साथ था, तो उससे महीना पहले उन्होंने लेटर लिखा प्रभुपाद जी को कि मेरे पिताजी का साथ है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी लेटर उनके घर में पड़ा हुआ है। तो प्रभुपाद जी ने जवाब दे दिया दोनों में ही सालों से पहले ही कि शाद करना है। उन्होंने प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया, नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज को कहा था कि आपने शाद करना है, अगर आप नहीं करोगे तो पूरी जनता जो है छोड़ देगी शाद करना। तो उसी का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी ने कहा आपको शाद करना है, हर साल करना है, लेकिन तरीका यह है कि आपने जो भी बनाना है हलवा पूरी जो भी है बनाइए और राधा कृष्ण को अर्पण कीजिए, उसके बाद जितने भी वैष्णव को 1, 2, 3, 100 जितने भी बनाना चाहते हैं बनाइए और उनको प्रसाद
मुन्य शुद्ध प्रसाद होना चाहिए शुद्ध वस्तु का। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
तो मैं प्रश्न
नहीं पूछिए ही आप।
तो भगवान बोलते हैं जब कर जलस्नाशी जजीवसी जलसी जब कर शशि कंदे का पुरुष मत करो। तो हम ज्योतिष करे साधु करे या और कुछ भी कनिष्ठान करे अगर भगवान को अर्पण करके करेंगे तो क्या ये हम बोधनों से नीचे हो जाएंगे?
क्या
हम जो कुछ करे
हाँ वो ठीक ठीक है वहां तक समझ रहे हैं आगे।
तो हम अगर भगवान को अर्पण करके सब कुछ करेंगे, ये गीता के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि जो कुछ करो जो कुछ खाओ जो कुछ करो,
हम अनुवाद समझ रहे हैं।
तो इस तरह हम भगवान का समर्पण करके करेंगे तो क्या हम मूलधर्म से विचित हो जाएंगे?
किस धर्म से?
जैसे हम भगवान के जो भगवान के भक्ति से विचित हो जाएंगे, ऐसे अगर हम श्रद्धा श्रद्धा करेंगे कुछ भी करेंगे।
आप ध्यान से कथा सुनते तो कोई अपराध हो जाता है? अब ध्यान से मैं जो बोल रहा था उसको ठीक से सुन लिए होते तो कोई अपराध हो जाता? वो अपराध नहीं था ना? तो यह बात इस पर कुछ प्रकाश नहीं आया था, भगवान की भक्ति ही मूल धर्म है। तो ये सब बात समझ करके प्रश्न करने जो दूसरे को दीजिए।
और जैसे हम कृष्ण भगवान की पूजा रोज करते हैं और जन्माष्टमी में हम विशेष रूप से करते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हम गया में जाके श्राद्ध कर लेते हैं तो वहाँ कोई विशेष पूजा हो जाती है पितरों की, लेकिन श्राद्ध हमको हर साल करना ही
है। ठीक है, इधर दीजिए, इधर इधर कोई लड़का पूछा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सोने चांदी के गाय में और जो गाय के शरीर से उत्पन्न गाय होते हैं उसमें अंतर है कि नहीं कुछ है? तो सोना चांदी गाय के रूप में दान कर रहे हैं ना, तो सोना चांदी दान करने का फल मिलेगा ना। तो दुधारू होती है सोना चांदी का गाय, दुधारू होती है। मूल धर्म है भगवान को कुछ अर्पित करना, भगवान की शरणागति स्वीकार करना, उसमें जो बाधा डाल रहा है उसका वह भी धर्म हुआ। भगवान को कुछ अर्पित कर रहे हैं तो वह भी धर्म नहीं है, उसमें जो बाधा डाल रहा है वह भी धर्म है। ये बात पहले कही जा चुकी है, उसको उसी समय सुन लेना चाहिए था। हाँ, कि क्या प्रश्न है? दे माइक, हाँ पहले उनको दे लो, इसके बाद फिर यहीं लौटा दीजिएगा माइक। हाँ हाँ ठीक, आभास और उपमा, हाँ ठीक। बहुत सुंदर प्रश्न। एक्चुअली मैं पहले से सोचा था कि बोले एक टेस्ट है, फिर मैं बाद में भूल गया, इस बात को कहा नहीं टेस्ट लेने के लिए कि श्रोता लोग इसको कर रहे हैं कि नहीं। देखिए ये जो उपमा है तो उसमें दो चीज है, या तो वेद के विरुद्ध है या दूसरे को ठगने के लिए कुछ आचरण कर रहे हैं। वो दो ही चीज स्थापित किया, दंभ तो दूसरे को ठगने के लिए, लेकिन जो आभास है तो उसमें दूसरे को ठगना उद्देश्य नहीं है, वो ऐसे अपने भावना के लिए भी अब कोई कपड़ा पहन लिए तो उसको आभास कहा गया। क्लियरली समझ गए ना? जैसे एक लाल कपड़ा पहन रहे हैं तो दूसरे को ठगने के लिए कि साधु समझ करके डोनेशन दे, एक ऐसे ही कुछ लोग तिलक लगा लेते हैं, कुछ कुछ कर लेते हैं तो वस्त्र भी पहन लिए, तो इसमें ठगना उद्देश्य नहीं। दोनों में अंतर यह, आभास में ठगना उद्देश्य नहीं है और उपमा में दूसरे को ठगना उद्देश्य है। हाँ, पाखंड और दम।
ये पाखंड और दम में, दम में आप ऐसा बोले कि दूसरों को ठगना होता है,
पाखंड में जिसका वेद में विधान नहीं है या वेद के बाहरी कक्ष में, वेद में उसका विधान नहीं किया गया और उसको कर रहे हैं, तो उसको पाखंड कहा जाता है। समाज में उसका कुछ रिजल्ट आता है, लोग उसको साधु मानने लगते हैं। जैसे ये तो दम जाकर नख अरु जटा विशाल ते प्रसिद्ध तापस कलिकाल। जटा बढ़ा लिए, नख रख लिए, उसी को मान्यता हो जाती है कि ये साधु है लोक में, अब उसको साधु ही मानते हैं। और उसमें अब जो पाखंड है और ये आभास है, तो उसमें अंतर कर सकते हैं कि जो पाखंड कर रहे हैं दूसरे को दिखाने के लिए, लेकिन जो आभास है अपने संतुष्टि के लिए उसको कर रहे हैं, इतना अंतर कर सकते हैं।
ये जो पांच साकार है, हम लोग तो याद होगा,
ऋत्विक सिस्टम का क्या मतलब होता है? हम तो केवल डिसाइपल कोर्स में परीक्षा देने के लिए उसको जाने, उसके अतिरिक्त हमको नहीं कुछ ज्ञान है। वो क्या सिस्टम है क्या, हमको कुछ ज्ञान नहीं। डिसाइपल कोर्स में जितना पढ़े वो भी ये धर्मात्मा कहे थे कि कापी जांचने के लिए कर लीजिए। जो टीचर थे उनको टाइम नहीं था, कापी हमको जांचने की आवश्यकता थी। हमको ऋत्विक के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है, हम नहीं कुछ बोलेंगे उस पर। उस पर कुछ जानना होगा तो कौन दयाराम या उनके जो एसोसिएट हैं उनसे आप पूछिए। डिसाइपल कोर्स नहीं किए हैं, कर लीजिए, उसमें कुछ पढ़ाई उस पर भी होती है। अहिंसा परमो धर्म,
तो उसको
अब तो केस क्या है, केस देखने पर विचार किया जाएगा ना। पार्टिकुलर केस क्या है, केस का डिटेल लिया तो अब कुछ इस पर विचार किया जाएगा। छह लोग पूछे थे ना गुडा केस जी, छल का अवसर हर जगह, हर जगह उसका त्याग करना होगा। छल का आश्रय लेकर के बुद्ध भगवान अहिंसा को स्थापित करने का प्रयास किए ना, वेद के वास्तविक अर्थ को नहीं वह ग्रहण किए। यहाँ भी छल का है अवकाश। अनुपात में व्यवहार चलना चाहिए ना। पासिंग मार्क तक पहुंच गए हैं 30% 40%, तो उसके अनुसार कम से कम पासिंग मार्क वहां तक तो पहुंचना चाहिए ना, तो वहां तक पहुंच जाए तो कोई लग सकते हैं। देखिए उसका वो जो डिवाइडिंग लाइन है, तो अब भक्ति के अतिरिक्त कहीं मन ही नहीं जा रहा है, न भोजन के तरफ ध्यान है, न कपड़ा के तरफ ध्यान है, पत्नी बच्चे का स्मरण नहीं आ रहा है, तो पितर की उपेक्षा कर देंगे कोई बात नहीं। ये दूसरे दूसरे से कनेक्शन जोड़ते चलेंगे, इतना लंबा फोन बुक रखेंगे ये फोन बुक रखे हैं तो दूसरे से कनेक्शन के लिए ही ना। कहीं कहीं भ्रांति हो जाती है, दूसरे दूसरे से बात करते रहते हैं, उनके घर में भी जा करके रुकते हैं, उस माता पिता को कर्मी बतला देते हैं, क्या कर देते हैं, ये सब बहुत उचित नहीं है। लेकिन किसी तरह कोई भक्ति में लगा हुआ है सबसे श्रेष्ठ है, कैसे भी कोई भक्ति कर रहा है वो सबसे श्रेष्ठ है।